खबरों से भरे न्यूज 18 के इस पॉडकास्ट में मैं अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यूज पॉडकास्ट में बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान की खबर के साथ साथ हम आपको बताएंगे दिल्ली में कोरोना का हाल, पंजाब के किसान आंदोलन की भी चर्चा करेंगे हम। इन खबरों के अलावा दिल्ली हिंसा से जुड़ी खबर भी लेकर आए हैं हम आपके लिए, और आज बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर भी होगी हमारी नजर, जहां अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई होनी है। तो चलिए चले बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में आज यानी 7 नवंबर की सुबह मतदान शुरू हो चुका है। इस तीसरे फेज में करीब 2,34,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस तीसरे चरण के चुनाव में 1,204 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इन उम्मीदवारों में विधानसभा अध्यक्ष और राज्य मंत्रिमंडल के 12 सदस्य भी हैं। इसके अलावा बिहार के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी कराया जा रहा है। यह सीट जदयू सांसद वैद्यनाथ महतो के निधन के कारण खाली हो गई थी। जदयू ने अपने दिवंगत वैद्यनाथ महतो के बेटे सुनील कुमार को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार प्रवेश कुमार मिश्रा से है। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 7,178 मामले दर्ज हुए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड आंकड़ा है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 64 लोगों की मौत इस वायरस की वजह से हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 40,000 के करीब पहुंच गई है। पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के कारण रेलवे को त्योहार के मौके पर चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को लगातार रद्द करना पड़ रहा है। उसने कुछ ट्रेनों के मार्ग भी परिवर्तित किए हैं। इस आंदोलन के चलते रेलवे ने 6 नवंबर से 9 नवंबर के बीच चलने वाली 12 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। वहीं 3 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जबकि 1 ट्रेन का मार्ग बदला गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल के अनुसार किसान आंदोलन का सीधा असर ट्रेनों के संचालन पर पड़ रहा है। आंदोलन को देखते हुए कई रेल सेवाओं में परिवर्तन किया जा रहा है। रद्द की गई ट्रेनों या मार्ग बदली गई ट्रेनों की पूरी लिस्ट आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर देख सकते हैं। दिल्ली हिंसा के मामले में गृह मंत्रालय ने अब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत उमर खालिद और शर्जिल इमाम पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने हिंसा मामले में उमर खालिद को UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। कानून के अनुसार UAPA के तहत किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से पहले गृह मंत्रालय की मंजूरी लेना जरूरी होता है। अब बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने करीब 1 सप्ताह पहले ही ये मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली पुलिस जल्द ही उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और NRC के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन मामले में लखनऊ पुलिस ने कई आरोपियों पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। पुराने लखनऊ में आरोपियों के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। मौलाना सैफ अब्बास और शिया धर्मगुरु कल्बेज सादिक के बेटे कल्बेज सिब्तेन नूरी की तस्वीरें भी आरोपियों के पोस्टर में शामिल हैं। कुल 15 लोगों की तस्वीर पोस्टर में दिख रही है। जानकारी के अनुसार 8 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत वांटेड घोषित किया गया है। सभी आरोपियों के घर के बाहर भी नोटिस चस्पा कर दिया है। 2 लोगों की आत्महत्या से जुड़े 2 साल पुराने मामले में बुधवार को गिरफ्तार हुए अर्णब गोस्वामी के केस की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में आज यानी शनिवार को होनी है। यह आदेश हाईकोर्ट ने अर्णब की गिरफ्तारी और अंतरिम राहत की याचिका की सुनवाई के दौरान दिया था। अदालत का कहना है कि जब तक वह सभी पक्षों की बात नहीं सुन लेती, तब तक वह अपना फैसला नहीं सुना सकती है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक शुक्रवार को पत्रकार अर्णब गोस्वामी की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अर्णब ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और अंतरिम राहत दिए जाने की मांग की थी। फिलहाल अदालत ने सुनवाई शनिवार यानी आज दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। इसरो प्रक्षेपण यान PSLV C-49 के जरिए 9 अंतरराष्ट्रीय उपग्रहों के साथ पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 का प्रक्षेपण आज करने जा रहा है। यह प्रक्षेपण शनिवार को 3:02 पर निर्धारित है। भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अपने 91वें मिशन के तहत 9 अंतरराष्ट्रीय विदेशी उपग्रहों के साथ EOS-01 को प्राथमिक उपग्रह के रूप में प्रक्षेपित करेगा। ये खबरें hindi.news18.com पर आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को देव विदा। नमस्कार दोस्तों।